सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमामि बद्धमानम तिथम धम्मस्य कर्तारम। फिर वचन सार परमागम का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पर चर्चा हुई, अब गे तत्व प्रज्ञापन की चर्चा चलती है, जिसे आचार्य जयसेन ने सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार नाम भी दिया है, जिसे अमृतचंद्र गे तत्व प्रज्ञापन कहते हैं। माने इस जगत में जो जानने लायक पदार्थ हैं, उस सभी पदार्थों का वर्णन दो प्रकार से इस गे तत्व प्रज्ञापन में करेंगे, एक सामान्य से और एक विशेष से। सामान्य से का मतलब ये है कि प्रत्येक वस्तु का स्वरूप क्या है, वो कैसी है, जो बातें सभी द्रव्यों में एक समान हैं, वो प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव है वो चर्चा करेंगे सामान्य गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार में। और जो प्रत्येक द्रव्य में अलग अलग हैं, जैसे जीव का चेतन लक्षण है, धर्म द्रव का गति हेतुत्व है, पुद्गल का मूर्तिक बना है, उसका वर्णन करेंगे गे तत्व के विशेष अधिकार में। ये जो सामान्य गे अधिकार है, ये प्रवचन सार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि ये स्वरूप जब तक हमारे ख्याल में नहीं आएगा तब तक सम्मा दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सम्यक दर्शन का विषयभूत जो भगवान आत्मा है, जिसकी चर्चा समय सार में की जाती है, वो भगवान आत्मा भी इस प्रवचन सार के गे तत्व प्रज्ञापन की पृष्ठभूमि पर ही समझा जा सकता है। इसलिए वो सबसे पहले गे तत्व प्रज्ञापन में जो वस्तु की व्यवस्था है द्रव्यगुण पर्यायात्मक, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। और सबसे पहली गाथा है अथो खलु दव्य मयो अथो खलु दव्य मयो। जितने भी पदार्थ हैं वो सब द्रव्यमय हैं, पदार्थ जो है वो द्रव्यमय है, और द्रव्य जो हैं वो गुण पगानी भणदानी, वे गुणात्मक हैं, वे गुण स्वरूप हैं, माने वे गुणों के पिंड हैं। तेहम पुण पज्जाया, वो उन द्रव्य और गुणों, उन दोनों की पर्यायें होती हैं। पज्जे मूढ़ा ही पर समया, लेकिन इस जगत के बहुत से जीव अकेली उन पर्यायों को ही जानते हैं और उनको ही सारा तत्व समझ लेते हैं। ऐसे जीव पर समय माने अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि होते हैं। ऐसी ही चर्चा दूसरी गाथा में भी है इसकी। इन दोनों को पढ़कर फिर अपन इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जे पज्जयेषु निरदा जीवा समय गतिर्न दिठा आद सहायम मिठदा ते सक समया मुड़े दव्या। कि जो जीव पर्यायों में लीन हैं वे पर समय कहे गए हैं, और जो आत्म स्वभाव में लीन हैं उन्हें स्वसमय जानना चाहिए। तो पहली बात तो अपन ये समझें कि स्वसमय पर समय क्या है। तो जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हैं, जो मुक्ति के मार्ग में लगे हैं, सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय जिनने प्राप्त कर लिया है, ऐसे चौथे गुणस्थान से लेकर आगे के सभी जीव स्वसमय कहलाते हैं। पर जिनने अपने भगवान आत्मा को नहीं समझा है, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं की है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र में लिप्त हैं, पर पदार्थों को अपना मानकर पर्यायों में भी एकत्व धारण करके जो बैठे हैं, उन जीवों को पर समय कहते हैं। जो लोग लोक में हमारे शब्द प्रचलित हैं, उनकी भाषा के हिसाब से बात करें तो हम कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी स्वसमय है और मिथ्या दृष्टि संसार मार्गी पर समय है। तो इस तरह से वो कहते स्वसमय व पर समय की बात, तो वो कहते पदार्थ तो द्रव्य गुण पर्याय आत्मक है। देखो गुण पर्याय द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, ऐसा सूत्र तत्वा सूत्र में है। और उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ऐसे सूत्र भी तत्वार सूत्र में है। तो उत्पाद वे द्रव्य से युक्त वह सत होता है और सद्रव्य का लक्षण है। तो इनकी चर्चा आगे प्रवचन सार में यही इसी अधिकार में अभी तत्काल ही करने वाले हैं। लेकिन इसकी जो एक विशेषता है ये है कि इन्होंने बात अर्थ से शुरू की। वहां तो एक गुण पर्याय के समुदाय को द्रव्य कहते हैं और ये कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय के समुदाय को अर्थ कहते हैं। क्या द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों के समूह को अर्थ कहते हैं। अथो खलु द्रव्यमयो, माने पदार्थ है वो द्रव्यमय है। तो यहां पदार्थ से मतलब सारे जैसे छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं ना, तो इस तरह अर्थ भी छह द्रव्यों का समूह ही है। द्रव्यों को ही पदार्थ कहते हैं वो कहते हैं, और पदार्थ द्रव्यों में गुण होते हैं और द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं। और जो द्रव्य को नहीं जानते वो गुणों को नहीं जानते, तो मात्र पर्यायों को जानकर उसमें ही अपनापन स्थापित कर लेते हैं। वे अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वे पज्जय मूल है, वो पर्याय में एकत्र बुद्धि धारण करने वाले हैं। और वो इसमें ये कहते हैं कि पर्याय गुण क्या है और पर्याय क्या है। तो वो कहते हैं कि द्रव्यों में अनादि काल से अनंत काल तक और सर्वांग प्रदेशों में रहने वाले हैं, उनको गुण कहते हैं। माने काल की भी जिनकी वो मर्यादा नहीं है और क्षेत्र की भी मर्यादा नहीं है, जो वो वस्तु द्रव्य है उसके संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में जो विद्यमान होता है उसे गुण कहते हैं। ख्याल में ना, भागों का मतलब प्रदेशों में जो वस्तु है ना, वो द्रव्य गुण पर्याय में जो है। और साथ में इसमें चार बातें और हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाग। तो द्रव्य तो वस्तु है और क्षेत्र बोलते हैं उसके प्रदेश को, एरिया को, और काल बोलते हैं उसके अनादि अनंतता को, पर्यायों को, और भाव बोलते हैं गुणों को। तो कहते हैं क्षेत्र जो सभी क्षेत्र में माने पूरे प्रदेशों में और सभी पर्यायों में माने अनादि काल से अनंत काल तक सब अवस्थाओं में जो एक से विद्यमान रहते हैं उनका नाम गुण है। अब कहते हैं द्रव्यों की भी पर्याय होती हैं और गुणों की भी पर्याय होती हैं। द्रव्य पर्याय क्या है और गुण पर्याय क्या है, तो हम तो वैसे तो ऐसा कह सकते हैं सीधा सच्चा कि जैसे ज्ञान गुण है, जानना उसकी पर्याय है, दर्शन गुण है, देखना उसकी पर्याय है, श्रद्धा गुण है, विश्वास करना श्रद्धान करना उसकी पर्याय है। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि वो गुणों की पर्याय होती है ना, तो अनंत गुण है आत्मा में, और जब गुणों का समुदाय द्रव्य है तो उन सब गुणों की पर्यायों को मिला दो तो वो द्रव्य की पर्याय हो जाएगी। लेकिन द्रव्य की पर्याय की भेद व्यवस्था यहां उन्होंने अलग से की है, ये बहुत समझने की बात है। गुणों की पर्यायों को मिला देने से द्रव्य पर्याय नहीं हो जाती है, ये खास समझने की है। जब गुणों का समुदाय द्रव्य है तो गुणों की पर्यायों का समुदाय द्रव्य पर्याय होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि उन्होंने तो ऐसा लिखा है कि दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय, उसको उन्होंने द्रव्य पर्याय कहा है। जैसे मनुष्य देव नार की तो जीव और पुद्गल की मिली हुई पर्याय है, तो उसको उन्होंने कहा ये विभाव व्यंजन पर्याय है अथवा विभाव द्रव्य पर्याय है। और उसके जब दो भेद किए स्वभाव द्रव्य पर्याय, तो अगर दो पुद्गलों की मिलकर बनती ना स्कंद, तो वो भी अनेक द्रव्यों, तो फिर अनेक द्रव्यों की जो मिली हुई पर्याय है उसका नाम द्रव्य पर्याय है। सब गुणों की मिली हुई पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय नहीं है। बहुत बारीकी से पढ़ना है तो इसमें पढ़ना, और ये बात आपको ख्याल में आएगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके ख्याल में नहीं आती है। वो तो अगर अनेक द्रव्यों की मिली हुई जो अवस्था है उसका नाम द्रव्य पर्याय है, और वो दो प्रकार की है, स्वभाव द्रव्य पर्याय और विभाव द्रव्य पर्याय। तो कहते दो 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 जैसे आपने असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य पर्याय ऐसे नाम दिए इस संसार में। तो जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है माने दो द्रव्य ऐसे हों जो एक सी जाति के नहीं हों, माने जीव है चेतन जाति का और पुद्गल है जड़ जाति का, और उन दोनों की मिली हुई पर्याय का नाम हम मनुष्य पर्याय देव पर्याय कहते हैं ना, तो इसको बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। और पुद्गल एक दो पुद्गल एक ही जाति के हैं, और दो पुद्गलों की मिलकर के जो पर्याय बनी तो वो भी द्रव्य पर्याय कहते हैं, उसे बोलते हैं समान जातीय द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय के ऐसे भेद के। और गुण पर्याय जैसे आत्मा में जो गुण है ना ज्ञान दर्शन चायत्र, इनको बोलते हैं स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय। तो जैसा गुण है गुण का स्वभाव है उसी रूप में उसका विकास होना, जैसे आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञत्व है केवल ज्ञान है, मतलब पूर्ण जानना है, कोई पदार्थ ऐसा नहीं हो कि जो उसे पूर्ण रूप से वो नहीं जाने, इसलिए केवल ज्ञान उसकी स्वभाव पर्याय है। और मति ज्ञान वो विभाव पर्याय है। मति ज्ञान विभाव पर्याय क्यों है, क्यों आत्मा का स्वभाव अकेले कुछ कुछ को जानना हो कुछ को जानना नहीं हो, सबको जानना है और वो सबको नहीं जानता है, इसलिए वो विभाव पर्याय है। तो गुण पर्याय अपने द्रव्य के भीतर ही होती है और अपने एक एक गुण की होती है, और द्रव्य पर्याय एक द्रव्य के बाहर की बात है। ये वास्तव में जो अपन असदूल व्यवहार नय का विषय जिसे अपन कहते हैं, जैसे दो प्रकार का व्यवहार बताया था ना, एक सद्भूत एक असद्भूत, तो अपने ही अंदर भेद करना वो सद्भूत व्यवहार, और दो द्रव्यों की मिलावट की बात करना वो असद्भूत व्यवहार। तो ये असद्भूत व्यवहार वाला विषय है ये कौन सा द्रव्य पर्याय जिसे अपन कहते हैं, और अनादिकाल से इस आत्मा ने यदि एकत्व बुद्धि की है तो ज्यादातर इस द्रव्य पर्याय में जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। टोनोमजी ने मोक्ष मार्ग प्रकार उसमें लिखा सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना अपने प्रशस्ति में लिखा सो असमान जाति पर्याय है ना, कौन मैं आत्म अरु पुद्गल खंड और मिलके भयो परस्पर बंद सो असमान जाति पर्याय। मैं एक पुद्गल हूं, मैं एक जीव हूं चैतन्य हूं, और एक पुद्गल का स्कंद है, ये दोनों में मिलकर जो असमान जाति पर्याय है उसका नाम मनुष्य है। और ऐसी ही एकत्व बुद्धि 99% होती है। वो मति ज्ञान में हूं, वो केवल ज्ञान में हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि किसको किसको अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को ऐसी एकत्व बुद्धि संभव है, वो तो बेचारा जानते ही नहीं केवल ज्ञान क्या होता है। और केवल ज्ञान का स्वरूप तो बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते हैं, उसका जब तक वास्तविक स्वरूप नहीं जाना तो उसमें एकत्व बुद्धि का अर्थ क्या, ऐसा कह देने का मैं केवल ज्ञानी हूं, इसका नाम थोड़ी एकत्व बुद्धि है। वो केवल ज्ञान को तो जानते ही नहीं ना। तो 99% समस्या तो पज्जे मूड़ा और परसमया में वो असमान जाति द्रव्य पर्याय के साथ है। उसमें एकत्व बुद्धि की समस्या है। और जो समान जाति द्रव्य पर्याय है, दो जीवों की मिलके तो बनती नहीं एक पर्याय मिलके, तो वो दो पुद्गलों में ही होती है। तो ये दो पुद्गल है, ये मकान है, अब इसको हम अपना कहते हैं, तो इसमें ममत्व बुद्धि रूप मान ये मेरा है ऐसा मूर्ता होती है, ऐसी मूर्ता होती है। और देह मनुष्य की ये शरीर में मैं ये हूं मान एकत्व बुद्धि रूप मूर्ता होती है। तो पज्जय मूड़ा ही परसमया, ये जो चर्चा इन गाथाओं में है वो विशेषकर असमान जाति द्रव्य पर्याय को लेकर है, अथवा समान जाति द्रव्य पर्याय जो है ना माने द्रव्य पर्याय को लेकर है। और इसलिए अपने सारे आगम में देह जीव को एक गने बहिरात्म तत्व मुदा है, ये सारी जो चर्चा आई है ये इस बात का उल्लेख करना मैं इसलिए यहां आवश्यक समझ रहा हूं, विशेषकर कि हमारे बहुत भाई मुमुक्षु भाई विद्वान जब पज्जय मूड़ा ही परसमया की बात करते हैं तो एकदम केवल ज्ञान पर्याय है और उसमें अपनापन माना स्थापित कर दिया विपर्याय मूड़ है, वहां से ही बात करते हो, सदगुणी हानि वृद्धि वाली पर्याय को बोलते हैं। मैं शुरू कर दें, किसी अपेक्षा उसमें भी हम घटित कर सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से वो बात नहीं है। मुख्य रूप से मैं मनुष्य हूं, मैं त्रेंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, ये जो अपने संयोगों में प्राप्त जो अवस्था है और इसमें जैसी एकत्व बुद्धि है आचार्य उसके लिए यहां पज्जय मूड़ा ही पर समया कह रहे हैं। आगे गाथाएं आएंगी और जिन गाथाओं में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, तो सारी जो पर्याय यहां तक कि राग रूप पर्याय को भी आत्मा में शामिल करके बात की है। और मैं कल ही गुरुदेव सिंह के प्रवचन इस पर पढ़ रहा था, पदार्थ विज्ञान को मैंने पढ़ रहा था, तो उसमें इतना साफ लिखा है कि ये राग की पर्याय में अंदर शामिल नहीं करे यहां उस प्रकरण में, तो वो मिथ्या दृष्टि है ऐसा लिखा था, अभी आप जाके देख लेना। और साथ में यह भी लिखा कि समय सार में जो अपेक्षा बताई है वो जुदी है और यहां अपेक्षा बताई है जुदी, सर्वथा ऐसा माने वो नहीं चलेगा। ये दोनों अपेक्षाओं को हमें ये बात को समझना पड़ेगा, वो बात भी गलत नहीं है लेकिन वो हमारे समय सार हमारे माथे पे कुछ ऐसा सवार हो गया है कि हम प्रवचन सार पढ़ रहे हैं ये बात भी हम भूल जाते हैं कि हम प्रवचन सार पे प्रवचन कर रहे हैं और किस गाथा पे प्रवचन कर रहे हैं ये बात भी हमारे ध्यान में नहीं रहती है। क्या यहां कहते पदार्थ जो है वो द्रव्यात्मक है, द्रव्य जो है वो गुणात्मक है और द्रव्य और गुणों दोनों की पर्यायें होती हैं और उन पर्यायों में अकेली पर्यायों में एकत्व बुद्धि कर लेना उसका नाम पज्जय मूढ़ है। जो द्रव्य को जाने साथ में और साथ में पर्याय को भी जाने और उनकी भिन्नता को भी जाने तो उसका नाम पर्याय मूढ़ नहीं है। तो इस तरह से इनमें दोनों में ही पर्यायों का स्वरूप बताया हुआ है। अब अपने 95वीं गाथा पर जाते हैं जहां पर कहते हैं कि द्रव्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि द्रव्य गुण और पर्याय बाला ही वास्तव में अर्थ माने पदार्थ है। तो अब इसमें द्रव्य का स्वरूप बताया है, अपरिचित सहावे नुपाद वेद्धुवत्त संवत्तम कदे अपरितक्त स्वभावे ने, माने अपने स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद वे ध्रुव संयुक्त है तथा गुण और पर्याय सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा देखो तत्वा सूत्र में जो बात बताई थी ना कि गुण पर्याय व द्रव्यम उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, जो तीन सूत्रों में द्रव्य की परिभाषा बताई है वो एक ही गाथा में वो तीनों बातें इसमें ले ली है। और एक बात और कह रही, अपने स्वभाव को छोड़े बिना, क्या ना इतनी बात और ले ली है। तो अपने स्वभाव को छोड़े बिना इसका क्या अर्थ है, क्या ठीक है ना, इससे क्या कहना चाहते हैं। वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है तो फिर अपने स्वभाव को छोड़े बिना ये इसका जो अर्थ है जो अम्बचंदाचार्य ने किया है, जैसेनाचार्य ने किया है, वो बहुत समझने लायक है और बहुत मार्मिक है। वो ये कहते हैं कि द्रव्य का लक्षण तो सत है। अब वो जो सत है जिसे हम सत्ता बोलते हैं, अस्तित्व बोलते हैं, वो अस्तित्व जो लक्षण है वो द्रव्य का लक्षण है। और द्रव्य तो अनंत अनंत है, अनंत तो जीव है, उसके अनंत अनंत पुद्गल हैं, फिर धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, असंख्यात काल द्रव्य, ये सब में घटित होता है। जो द्रव्य का लक्षण है वो तो सब में घटित होता है, तो क्या सब मिलके एक द्रव्य है? तो वो कहते हैं अस्तित्व माने सत्ता। सत्ता दो प्रकार की होती है, अथवा अस्तित्व दो प्रकार का होता है। सत्ता दो प्रकार की होती है तो बोलते महासत्ता और अवांतर सत्ता। और अस्तित्व दो प्रकार का होता है तो बोलते सादृश्य अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व। तो महासत्ता का नाम है सादृश्य अस्तित्व और अवांतर सत्ता का नाम है स्वरूपास्तित्व। तो ये लिखा ना अपरिचित स्वभावे ने, माने स्वभाव को छोड़े बिना, तो ये कह रहे हैं कि स्वरूपास्तित्व को छोड़े बिना जो सादृश्य अस्तित्व में शामिल है उसकी बात कर रहे हैं। वो उत्पाद में द्रव्य से युक्त है, गुण पर्याय वाला है और उसे द्रव्य कहते हैं। क्या अब उत्पाद में द्रव्य से युक्त और गुण पर्याय वाला है, इसकी चर्चा जरा बाद में करेंगे। लेकिन इस स्वरूपास्तित्व को छोड़े बिना सादृश्य अस्तित्व में शामिल है उसको द्रव्य कहते हैं। ये इसका क्या अर्थ है, ये शायद इसकी व्याख्या बहुत कम की जाती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप जैनी हैं, आप दिगंबर हैं, दिगंबर जैन है ना, तो आप दिगंबर हैं कि जैन हैं? बोलो बोलो, आपको एक जैन समाज का संगठन बनाया तो उस संगठन का सदस्य आपको बनना है, और एक दिगंबर जैन समाज का संगठन बनाया, एक श्वेतांबर जैन समाज का संगठन बनाया, तो हमने दिगंबर जैन समाज के संगठन में हम शामिल हो गए, है ना। अब वो जो बड़ा संगठन बनाया दिगंबर श्वेतांबर का मिला करके जैनों का, यदि वो ऐसा कहें कि भाई यदि तुम इस जैन संगठन के सदस्य बनना चाहते हो तो दिगंबर संगठन का तुम्हें कोई सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, ये दो दो बातें नहीं चलेंगी कि तुम दिगंबर जैन भी रहो जैन भी रहो। क्यों, जैन सोशल ग्रुप में शामिल होना है तो दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के सदस्य नहीं रह सकते हो। यदि ऐसा अनिवार्य कोई लगाए तो मैं पूछता हूं कि आप किस में शामिल होंगे दो में से, दिगंबर जैन में होंगे साहब? ऐसा कि हमको ऐसा जैन नहीं बनना है कि जिसमें हमारे दिगंबरत्व की पहचान समाप्त होती हो। क्यों, कि आपको महासत्ता में शामिल होना है, सादृश्य अस्तित्व में शामिल होना है, तो तुमको ये स्वरूपास्तित्व ये छोड़ना पड़ेगा। क्यों, तो कहते हैं कि नहीं भाई साहब, हमें ऐसा शामिल नहीं होना। तो ये कहते हैं कि स्वरूप को के अस्तित्व को छोड़े बिना और हम महासत्ता में शामिल हैं, ऐसा सादृश्य अस्तित्व जैन धर्म को स्वीकार है। क्या मन्ना जी, है ना माल है? है? क्या अपरितत्त स्वभावे ने, अपने स्वभाव को छोड़े बिना, माने आत्मा का ज्ञान स्वभाव, पुद्गल का मूर्ति बना स्वभाव है। तो ये कहते ये छोड़े बिना और हम में उत्पाद वे द्रव्य भी है और हम गुण पर्याय वाले भी हैं, इसलिए हम चेतन होकर के भी द्रव्य हैं। इसको बोलते हैं वो महासत्ता वाली बात है ना, अपरित्यक्त स्वभावे ने, कि जिसने अपने स्वरूप अस्तित्व को छोड़ा नहीं है और जो महाअस्तित्व में शामिल हो गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब हम तो जगत में एक परमात्मा है और हम सब उसके अंश हैं, है ना, हम तो सारे इस सृष्टि के एक अंश हैं। तो ऐसे हम किसी महासत्ता के अंश हैं, ये बात सही है। महासत्ता के हम अंश हैं, लेकिन अपने स्वरूप अस्तित्व को छोड़े बिना। मैं अपने स्वरूप अस्तित्व में शामिल हूं और सादृश अस्तित्व में भी शामिल हूं। माने उत्पाद वे द्रव्य नामक गुण भी हम में हैं और गुण पर्याय वाले भी हम हैं, ऐसा स्वरूप में सादृश अस्तित्व माने गुण पर्याय वाले तुम भी और हम भी हैं, दोनों का अस्तित्व समान है। आप भी अनंत गुण वाले हो और मैं भी अनंत गुण वाला हूं, पुद्गल भी अनंत गुण वाला है और आप में भी पर्याय होते हैं, गुणों की पर्याय है, द्रव्य की पर्याय है और हम में भी गुणों द्रव्य पर्याय है। एक गुण पर्याय व द्रव्यम, और आप में भी उत्पाद व द्रव्य है और हम में भी उत्पाद व द्रव्य है। ये उत्पाद व द्रव्य की विशेष चर्चा थोड़ी आगे करेंगे, अभी तो इतनी बात है। तो हम इस मामले में समान हैं, क्या कि हम भी गुण पर्याय वाले हैं और तुम भी गुण पर्याय वाले हो, और हम भी उत्पाद व ध्रुव वाले हैं और तुम भी उत्पाद व ध्रुव वाले हो। इन बातों में हम और तुम एक से हैं, और एक से हैं इसलिए इस अस्तित्व का नाम क्या है, सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य माने एक से होना। अब ये सादृश्य अस्तित्व को एक से होने को भी दुनिया में एक हैं ऐसा व्यवहार किया जाता है। हम सब जैन एक हैं, कहना तो है एक से हैं, हमें भी जैनत्व की श्रद्धा है, तुम में भी जैनत्व की श्रद्धा है, कहना तो चाहते हम ऐसा है कि एक से हैं, है तो वो सादृश्य अस्तित्व, लेकिन लोक में एक हैं ऐसी भाषा कही जाती है, क्योंकि हमें एक से में थोड़ी फूट सी नजर आती है, वो एक कहने में एकदम मजबूती से एकता नजर आती है। तो ये एकता के लोभी लोग क्यों हैं, वो एक से को भी एक कहते हैं। लेकिन हमें अपने ज्ञान में समझ लेना चाहिए कि जो एक हम सब जैन एक हैं, हम भारतीय एक हैं, ये सब सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से बात कही जा रही है। अब कोई कहेगा जी तुम एक ही हो ना, तो हम में शामिल हो जाओ ना, फिर तो काहे को अलग अलग एजेंडा लिए फिरते हो, क्यों हम सब भारतीय एक है ना, तो तुम जैनी क्यों हो, जैन मंदिर अलग क्यों, क्यों कहने साहब नहीं चलेगा। यदि सब जैन एक हैं तो दिगंबर फिगंबर का चक्कर क्यों लगा रखा है, सब दिगंबर एक हैं तो मुमुक्षु मुमुक्षु का चक्कर क्यों लगा रखा है, क्यों ये हम सब एक ही हैं तो फिर ये क्यों कि साहब हम बिल्कुल सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से एक हैं और स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से तो हमारे द्रव्य गुण पर्याय के बाहर हम किसी से भी एक नहीं हैं। उस सादृश्य अस्तित्व का जो कथन जिनागम में किया गया है वो स्वरूप अस्तित्व का कुछ छोड़े बिना है, और हमने उसे छोड़कर उसके साथ में एकत्र स्थापित कर लिया है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, उसका नाम है पज्जय मूढ़ाही पर सभिया। वास्तव में पर्याय कहते हैं ना उसे, वो पर के साथ एकत्र है, वो वास्तव में पर्याय की मुख्यता नहीं है उसमें देवेंद्र बाबू, क्यों क्यों वो असमान जाति पर्याय की बात है वहां। तो मनुष्य में मनुष्य जब बात कहता हूं तो अकेले जीव ही द्रव्य के गुण द्रव्य गुण पर्याय थोड़ी है, वहां तो अपुद्गल भी है ना और उसके द्रव्य गुण पर्याय भी शामिल हैं। तो ये पर से एकत्व वाला चक्कर है, अकेली अपनी पर्याय से एकत्व वाला चक्कर नहीं है कि जिससे हमारा संबंध असद्भूत है, वास्तव में है ही नहीं। तो पर्याय की एकत्व बुद्धि यह है, इसमें तो कथनचित है, क्योंकि अभी आगे ही सिद्ध करेंगे कि द्रव्य गुणों पर्याय के प्रदेश भेद नहीं है, ये सिद्ध किया इसमें प्रतिसार में। और उसको ऐसा कहा, देखो वो कि दो तरह का, जैसे मैंने स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व के बारे में बताया ना, ऐसे ही एक मर्म की बात इस प्रतिसार में समझने की और है, और वो क्या है, अन्यत्व और भिन्नत्व, पृथकत्व। ये पृथकत्व और अन्यत्व क्या है ये भी समझना, इसके बिना ये प्रतिसार का ये अध्याय समझ में नहीं आएगा। कहते दो द्रव्यों के बीच में जो भेद है उसका नाम है पृथकता, और एक ही द्रव्य के बीच में, द्रव्य गुण पर्याय के बीच में जो भेद बताया जाता है उस भेद को बोलते हैं अन्यता। इसी प्रचन सार में अमृतचंदाचार्य ने इनकी परिभाषा दी है, विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम, कि प्रदेशों का अलग अलग होना वो पृथकता का लक्षण है, और अतद्भाव अन्यत्व लक्षणम, वो अतद्भाव होना, भाव की भिन्नता होना अकेली, द्रव्य की भिन्नता नहीं, क्षेत्र की भिन्नता नहीं, काल की भिन्नता नहीं, अकेले भाव की भिन्नता होना वो अतद्भाव, मतलब वो भाव नहीं है। जैसे मान लो ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण, तो ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण का द्रव्य एक है, अब असंख्यात प्रदेश में दोनों हैं तो क्षेत्र एक है, और प्रति समय दोनों हैं इसलिए काल एक है, लेकिन भाव भिन्न है, माने एक का काम जानना है और एक का काम देखना है। इसके बोलते हैं अतद भाव, कि तीन चीजें हैं इकट्ठी, ख्याल नहीं ना, जैसे अपन ये कहते हैं ना कि ये हमारे पड़ोसी है, एक कहने का भाई है, हम भाई भाई मुंह बोला भाई है, भाई बोलते हैं इसे ना, मतलब इसके माँ बाप और हमारे माँ बाप एक हैं, ना बाल बच्चे एक हैं, ना मामा मामी एक हैं, और ये मेरा सगा भाई है। ये सगा भाई और ये भाई में क्या फर्क हुआ, कि जिनके माँ बाप एक हों, भाई बहन एक हों, मामा मामी एक हों, भुआ फूफा एक हों, क्यों, यहां तक कि घर एक हो तो उसे बोलते हम सगा भाई, और इनमें से सब जुदे जुदे हैं तो वो कहेंगे कहने का भाई, मैं असली भाई है ही नहीं, वो कहने की बहन, और ये सगी बहन, वो कहने की बहन से कल हमारी शादी हो जाएगी तो पत्नी हो जाएगी, लेकिन सगी बहन से हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की। तो परद्रव्य के साथ जो संबंध है वो तो कहने का है, क्योंकि वो स्वरूपास्तित्व तो हमारा अलग है। देखो द्रव्य गुण पर्याय में जिनमें अतद भाव होता है उनका स्वरूपास्तित्व तो एक होता है, अलग अलग नहीं होता है। बड़े ज्यादा ध्यान से सुनना, क्या हवरा जी, स्वरूपास्तित्व तो जिनका एक होता है, अलग अलग नहीं होता है, उनमें होता है अतद भाव, और जिनका स्वरूप अस्तित्व अलग अलग होता है और सादृश्य अस्तित्व एक होता है उसे क्या बोलते हैं, पृथकत्व। ये जो भिन्न जो शब्द है ये हम दोनों के लिए उपयोग कर लेते हैं, काय के लिए, द्विगुण पर्याय में जो भेद है उसको भी भिन्नता कह देते हैं, और जो दो द्रव्यों के बीच में भेद है उसे भी भिन्नता कह देते हैं, लेकिन अंतर है, आत्मा और राग अन्य अन्य है, आत्मा और ज्ञान अन्य अन्य है, और आत्मा और देह पृथक पृथक है, और हम भिन्न शब्द का प्रयोग दोनों के लिए कर लेते हैं कि आत्मा और राग भिन्न भिन्न है और आत्मा और देह भिन्न भिन्न है, लेकिन ये भिन्न भिन्न में दो अलग अलग अर्थ हैं, एक पृथकता के अर्थ में और एक अपृथकता के अर्थ में, तो कहते हैं अतद भाव के अर्थ में। तो स्वरूपास्तित्व जिनका एक है उनमें होता है अतद भाव, और जिनका स्वरूपास्तित्व अलग अलग है उनमें होता है पृथकता। तो यहां पर मुख्य रूप से उन पर्यायों की बात है कि जिनका स्वरूप अस्तित्व भी अपने से अलग है। तो मनुष्य पर्याय जैसे वो मिक्सर है ना, परद्रव्य की बात है ना, यानी इसलिए वो तो वो कोरा कहने का व्यवहार है, वो तो मिट्टी के घड़े को घी के घड़े कहने जैसी बात है। अब मैं कह रहा हूं मिट्टी के घड़ा घी का घड़ा, मिट्टी के घड़े में तो कम से कम घी रखा जाता है और मिट्टी के घड़े के परमाणु परमाणु में भी वो प्रवेश कर जाता है। दुनिया में व्यवहार तो ऐसा होता है कि वो उसका हो गए ही नहीं, घी नाम की कोई चीड़े ही नहीं हो, ऐसा ऐसा है कोई व्यवहार होता, ऐसा कोई उदाहरण है? वो आचार्यों के सामने तो था नहीं, वेतारे भी क्या करते, उन्हें भी घी के घड़े से काम चलाना पड़ा और अपना डालडा घी, अब इसमें घी नाम की चीज ही नहीं है। दूध दही से घी बनता है ना, गाय भैंस वगैरह से, उसी को घी बोलते ना आप, तो वो तो वनस्पति से बना हुआ है, उसमें तो घी नाम का नाम की चीज ही नहीं है। क्यों? अब उसके नाम घी के नाम से चल रहा है डालडा घी। अरे घड़े में तो घी लगा है ऐसा रखा गया था, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उसको भी डालडा घी बोलते कि नहीं बोलते, बोलिए। तो ये दो बातें आज आप ध्यान में रखना कि एक स्वरूपास्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। ये जो महासत्ता जिसे हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, वो सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा है, क्योंकि आप भी हैं और हम भी हैं, बस ये हैं की अपेक्षा हम हमारे आप रिश्तेदार हैं, हमारा आपका संबंध हो गया। कहेगा कि आप भी हैं और हम भी हैं, ऐसा भी होता है संबंध क्या है ना, आप भी जैनी हैं और हम भी जैनी हैं, ये है ही क्या संबंध है? बिल्कुल दो का अस्तित्व बिल्कुल पृथक पृथक है क्या नहीं, स्वरूप अस्तित्व, बस जैनी अकेले अस्तित्व। ये सादृश्य अस्तित्व एक तो महासत्ता रूप होता है और एक अवांतर सत्ता, अवांतर सत्ता माने यूनिट, एक इकाई, अपने द्रव्य गुण पर्याय को मिला के है ये यूनिट, वो समय सार वाला यूनिट नहीं है कि पर्याय भी जुदी गुण भी जुदे, ख्याल में आया ना, गुण भेद भी जुदा, ये द्रव्य गुण पर्याय की मिलाकर जो एक इकाई है उसका नाम क्या है, स्वरूपास्तित्व। और इसके अलावा जितने द्रव्य हैं उनके साथ भी हमें हमारी जो एकता की कल्पना है वो काय के आधार पर है, उसका हेतु क्या है? बहुत गजब की बात है कि हेतु सिर्फ इतना है कि देवी है और हम भी है, बोलो कैसी रिश्तेदारी है? आप हंसेंगे, कैसे हंसेंगे? कैसा ये हमारे हैं, क्यों? ये भी बॉम्बे सुपरफास्ट से आए हैं और मैं भी बॉम्बे सुपरफास्ट से आया हूं, ये भी कोई संबंध होता है? तो ये तो बहुत है, ये तो कहते हैं कि सिर्फ हैं का भी संबंध होता है, मेरा और गधे के सींग का कोई संबंध नहीं है। क्यों? कि ना अवांतर सत्ता है वहां और ना महासत्ता का है, समझ में आ गया कि नहीं है? क्योंकि वो नहीं है और मैं हूं, इसलिए वो मेरे से जुड़ा है। और कहते हैं कि तुम भी हो और मैं भी हूं, भाई ये है का संबंध हमारा और आपका है। अब ये कहते हैं के संबंध के आधार पर स्वरूपास्तित्व को भूलकर, ध्यान से सुनना, और ऐसे संबंध के आधार पर किसी पर से अपनापन स्थापित कर लिया, इसका नाम है मिथ्याचार। तो इसलिए हम उसका संबंध ही छोड़ दें कि वो हमारा कुछ भी नहीं है, इसका नाम भी है मिथ्या दर्शन। क्या कह रहे? समय सार में ये बताया है कि उस सादृश्य सत्ता के आधार पर स्वरूप अस्तित्व की को भूलकर संबंध स्थापित कर लेना वो मिथ्यात्व है। और प्रोजन सार में ये बताया है कि उससे मिथ्यात्व ना हो जाए इस डर के मारे वो महासत्ता वाला जो फैक्ट है उससे भी इंकार कर देना, उसका नाम भी मिथ्या दर्शन नहीं है, क्योंकि वो भी एक संबंध है। वसंत जी साहब, मैंने आपसे इतना समय लिया ना, माल देने के लिए लिया है, मेरी जरूरत पड़ेगी तो फिर भी लूंगा, घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्टडी किए बिना जो मैं आपको कहना चाहता हूं मैं अब नहीं कहूंगा। ख्याल में है ना। अब देखिए इसका क्या चक्कर है कि वो जो महासत्ता है जिसे सादृश्य अस्तित्व बोलते हैं, वो महासत्ता से लेकर और अवांतर सत्ता के बीच में अनंत सत्ताएं हैं। क्या मतलब? इस अस्तित्व के आधार पर हम सब एक हैं ना, महासत्ता के आधार पर। फिर हम बीच में फिर कहेंगे हम सब मनुष्य हैं। वो तो सब सब काय के आधार पर कहा था, हैं के आधार पर। फिर हम कहें सब जीव हैं, सब ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो ये भी महासत्ता कहलाएगी। एक ये भी सादृश अस्तित्व कहलाएगा, सब जीवों की समानता वाला। क्योंकि अवांतर सत्ता तो अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर नहीं बढ़ती है, और महासत्ता सबको शामिल करती है, तो उसके बीच में लाखों सत्ताएं हैं। जो संग्रह नय और व्यवहार नय से की बात है, संग्रह नय है ना, वो तो महासत्ता को पकड़ता है, शुद्ध संग्रह नय। क्या शुद्ध संग्रह नय महासत्ता को पकड़ता है, और समझ लो सूत्र नय अकेली सत्ता को पकड़ता है, और बीच में व्यवहार नय संग्रह व्यवहार आता ना, निगम संग्रह व्यवहार, वो व्यवहार महासत्ता से अवांतर सत्ता तक लाता है, और अवांतर सत्ता से महासत्ता तक ले जाता है। क्या मतलब? तो उसे अवांतर महासत्ता में भेद कर देता है, उसे अशुद्ध महासत्ता बोलते हैं। कैसे अशुद्ध महासत्ता? जैसे अपने कहा हम सब हैं के आधार पर, तो शुद्ध महासत्ता होगी, सब एक हो गए सन मात्र। अब फिर कहते हैं चेतन, तो ये चेतनता भी महासत्ता का भेद है, क्यों अवांतर सत्ता नहीं है जे, क्योंकि चेतनता सब जीवों में है, और जबकि दो जीवों में सत्ता अलग अलग है, मेरी चेतनता अलग है तुम्हारी चेतनता अलग है, तो अवांतर सत्ता तक तो आए नहीं हम। तो ये जीवत्व की पहचान हुई, वो द्रव्यत्व की पहचान हुई, ये जीवत्व की पहचान हुई, ये मेरी पहचान नहीं है, जीवत्व मेरी पहचान नहीं है। क्या समझ में आया? ये तो अनंत जीवों को लपेटती है, आपके ख्याल में आ गए ना। तो फिर जीव से लेकर मनुष्य पे आए, इन देवों को नारकियों को तो अलग किया, लेकिन मनुष्य भी तो 29 अंक प्रमाण है, इतनों को लपेट लिया, इसलिए शुद्ध नहीं है ये, अशुद्ध महासत्ता है, अवांतर सत्ता तो है ही नहीं। तो जब आते आते हम अपने द्रिगुण पर्याय तक आ जाएं, जिसे कि गुरुदेव श्री प्रमाण का द्रव्य कहते थे, क्या तो भाषा आगम की नहीं है, वो कंफ्यूज करती है। क्यों? कि प्रमाण का द्रव्य तो सारा जगत प्रमेय है, अब समझे कि परद्रव्य के प्रमाण का विषय नहीं है, केवल ज्ञान प्रमाण है क्या नहीं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, केवल ज्ञान प्रमाण है क्या नहीं, तो केवल ज्ञान ने जो लोकालोक को जाना वो प्रमाण है क्या अप्रमाण, तो प्रमाण के विषय में क्या लोकालोक नहीं है, क्या वो अप्रमाण है सारा ज्ञान? वास्तव में बात तो ये है कि हम अवांतर सत्ता तक आए, वो महासत्ता से अवांतर सत्ता में स्वरूपास्तित्व तक आए। क्या? मेरा अस्तित्व। तो जब तक जितने भी संबंध स्थापित होंगे वो सब वो महासत्ता वाला, जो शुद्ध महासत्ता और अशुद्ध महासत्ता के आधार पर होते हैं, उसका हेतु ये है। अब शुद्ध अशुद्ध महासत्ता नहीं है कोई सर्वथा ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि है कि नहीं, प्रथम साल में लिखा वो भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसने हमारे महासत्ता की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और इसने उसके आधार पर स्वरूपास्तित्व का उल्लंघन कर दे और अपना स्वरूप से भी उसके अस्तित्व मान ले तो भी मिथ्या दृष्टि है। समय सार में स्वरूपास्तित्व के बाहर गया और मिथ्या दृष्टि गया, माने ज्ञान तो जाएगा ही। वो कहता कि स्वरूपास्तित्व के बाहर किसी को भी कोई भी हमारा नहीं, वो तो सदा सद्भूत है, और इसके अंदर जो आया द्रव्य गुण पर्याय के भीतर तो फिर वो जो भेद करता है कि इसमें भी जिनके आश्रय से विकल्प की उत्पत्ति हो वो पर और जिनके आश्रय से निर्विकल्प की उत्पत्ति हो वो स्वा। तो त्रिकालीतर भगवान के आश्रय से निर्विकल्पता की उत्पत्ति होती वो स्वा, पर्याय के आश्रय से, गुण भेद के आश्रय से, प्रदेश भेद के आश्रय से विकल्प की उत्पत्ति होती है, इसलिए वो पर। प्रदेश नहीं प्रदेश भेद, गुण नहीं गुण भेद। गुण को प्रदेशों को अभेद रूप से लें तो वो विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती है, तो वस्तु में शामिल है। ऐसी गुणों की अखंडता, प्रदेशों की अखंडता और पर्यायों की शब्द बोलने जब आपको घबराहट होगी तो काल की अखंडता क्या काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी अखंडता वो दृष्टि का विषय है और उसमें अपनापन, उसका नाम सम्मा दर्शन है। ये समय सार की से तो स्वरूप अस्तित्व में से निर्विकल्प स्वरूप का अस्तित्व निकालना। लेकिन ये उससे बड़ा मिथ्यात्व है। कौन सा? उस स्वरूपास्तित्व में पर का अंश भी शामिल कर लेना जो मिथ्यात्व है ना। और ऐसे ही जो हमारा पर के साथ में महासत्ता का संदर्भ है उस संदर्भ से इंकार कर देना उससे बड़ा मिथ्यात्व है। किस अर्थ में? कि ये मिथ्यात्व छूटे बिना वो तब तक लालिमा निकालना संभव नहीं है। क्यों जी? एक दफे लालिमा नहीं निकलेगी और पेट में चली जाएगी तो इतना नुकसान करने वाली नहीं है, जितनी खोपड़ी पेट में चली गई तो दांत टूट जाएंगे, पेट खराब, पेट खराब हो जाएगा, ख्याल में आएगा नहीं आएगा। तो दो बातें हो गई, कौन सा? कि एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता। और एक दूसरी बात ये हो गई कि वो जो क्या क्या है क्या बोला था वो अन्यत्व और भिन्नत्व पृथकत्व, समझे ना? तो कहते हैं कि इन दो द्रव्यों के बीच में पृथकता है, ये स्वरूपास्तित्व की उपेक्षा है। अब क्या होगा सुनो, कि एक तो महासत्ता जिसमें हमारे अपने द्रव्यगुण पर्याय को छोड़कर किसी भी पर के साथ से लेकर सारे लोकालोक से एकत्व की बात होती है, वो सादृश्य के आधार पर होती है, इसलिए उसको बोलते हैं सादृश्य अस्तित्व। और अपने जो द्रव्यगुण पर्याय के अंदर होती है वो सादृश्य के आधार पर नहीं होती है, वो स्वरूपास्तित्व के आधार पर होती है। जो हम ये कहते हैं कि विराग हमारा है कि ज्ञान मति ज्ञान हमारा है, तो वो दोनों का स्वरूप अस्तित्व एक है, उसके द्रव्यगुण पर्याय एक हैं, उसका क्षेत्र एक है, काल एक है, मतलब भाव भेद है, तीन चीजें एक हैं और भाव भेद है। तो वो जिसका भाव का भेद है उनका अपने अंदर अस्तित्व का निषेध नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूपास्तित्व भी वो ही है जो मेरा है, तो उसका नाश करेंगे तो मेरा ही नाश हो जाएगा। तो क्या कहते, वो भाव का जो भेद है, ध्यान से सुनना राजा, वो भाव का भेद दृष्टि में खड़ा रहता है तो विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो भाव का भेद तेरी दृष्टि में से निकालना है, वस्तु में से नहीं, क्योंकि वस्तु में से तो वो निकल ही नहीं सकता है, ख्याल में है ना? ये परस्य जो है ये कहते तो तोड़ना ही है, बिल्कुल वस्तु में से ही निकालना है, वस्तु में है ही नहीं, निकालना क्या है ऐसा जानना है। अब वो वस्तु में से निकलनी है इतना समझना है, लेकिन वो विकल्प खड़ा की उत्पत्ति होती है, ख्याल में है ना? इसलिए उसकी बात नहीं? वो करनी है। एक तो ऐसा वक्त है जो जिसमें मुंह में भी नहीं देना, और एक ऐसा मुंह में दे लिया खा लिया तो पेट के अंदर उतार लो, फिर मुंह में कुल्ला कर लो, तो मुंह में मुंह उससे भी जूठा रहेगा तो जिनवाणी नहीं छू सकते हो। ये अभक्त तो पेट में जाएगा तो जिनवाणी नहीं छू सकते हो, लेकिन एक पदार्थ पेट में रहेगा तो जिनवाणी छू सकते हो, लेकिन वो मुंह में नहीं रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों का उदाहरण ख्याल में आया कि नहीं? बात मुंह में तो सब अवक्त है जिनवाणी पढ़ने के लिए, अटबैरा घी का हलवा बना हुआ मुंह में रखा हो जिनवाणी पढ़ो ये नहीं चलेगा, मंदिर में आओ ये नहीं चलेगा, कि वो तो भक्त है, जो पेट में रखे वो चलेगा। देखिए मांस मदरा ये तो पेट में भी होगा तो तू मंदिर में आने के काबिल नहीं है, तुझे वाणी सुनने के काबिल नहीं है, कर भी लेगा तो उसका लाभ तेरे को प्राप्त होगा। ऐसा फर्क है दोनों का, रूपास्तित्व साध्य अस्तित्व और अतद्भाव और क्या पृथकता, इन दोनों में फर्क है। तो यहां जो पज्जे मूढ़ा की बात है वो हम अकेले उन्हीं में बस केवल ज्ञान राग से भी नहीं। अपने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वरुणादि अनुरागादि ने निज भाव को न्यारा किया, और ये कहां लिखा है मुनि धर्म के वर्णन में, और उसके बाद में सीधा मोक्ष में पहुंचा दिया उनने, उन्हें जरूरत नहीं पड़ी केवल ज्ञान से, फिर तो बता ही नहीं और मोक्ष में कहीं चला जाएगा। देखा कि नहीं लिखा, क्या देखा कि नहीं, वरुणादि अनुरागादि ने निज भाव को न्यारा किया, इधर हिंदी के पंडित की बात है। वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, के वर्णादि और रागादि ये सभी भाव एस पुंसा इस भगवान आत्मा से भिन्न एव भिन्न ही है। कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है। अब धारा को देखो, 100,000 जगह ये निकलेगा पर एकाध जगह वो बात भी निकलेगी, वो भी है ना जिनवाणी में, मना कौन करता है, क्योंकि उनके लक्ष्य के भेद से लक्ष्य आत्मा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए वो भी बात है। लेकिन तुमने वो एक ही एक हो गई है तो ये दूसरी गायब ही हो गई है, ये कोई जैसे बात ही नहीं रही है। अरे सीधा देह से भेद विज्ञान हो गया सीधा, और आत्मा में केवल ज्ञान हो जाता है। विकल्प में राग से भेद विज्ञान भी नहीं आया तो चले क्या करे, हुआ ना सिद्धभूति मुनि को, क्या उदाहरण है आपके सामने, तुस मास भिन्नम, कि तुस भिन्न है और मास भिन्न है, देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, एक ख्याल आया और रुपये के अंदर गया, और क्यों इसे बुद्ध राग से भिन्न की क्यों बात नहीं आई, कि उससे एकत्व का विकल्प ही नहीं था, उसे केवल ज्ञान से एकत्व का विकल्प ही नहीं था। ये दाना धूल तो तुम्हें साफ करने पड़ रही है क्योंकि तुमने अपने माथे पर धूल उड़ा उड़ा के पोती है, क्यों होली निकल गई और मेरे को तो अपने चेहरे पर साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो कभी कभी साल साल भर तक भी साबुन नहीं लगाता हूं, जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्यों कि होली खेली ही नहीं, क्यों ये काला मुंह किया ही नहीं, ये लाल मुंह किया ही नहीं, लंगूर बने ही नहीं, ना काले मुंह के ना लाल मुंह के, अन्ना जी ने बहुत खुशी मताई मेरे को कि अगली साल तो आप थे और आपने बहुत प्रयत्नपूर्वक होली को शुद्ध पवित्र रखा था, और अब की बार तो आपके बिना ही पवित्र होली रह गई, किसी के मन में विकल्प भी नहीं है, विद्यार्थियों के मन में भी विकल्प नहीं आया कि कोई गंदी मंदी होली वोली खेला खेली करें कोई, क्यों मोर रंगा ही नहीं तो सफाई करने की जरूरत कहां पड़ेगी, अरे तुष्मासम घोषणतम वाले में कोई ज्यादा घबरा चाहिए ही नहीं थी, देह से भिन्न भगवान आत्मा में केवल ज्ञान हो गया। ख्याल में है ना, तो इसलिए कहते हैं इस प्रश्न सार की देखो मरम की बात है क्या ना, नया वस्तु के उत्पाद वह द्रव्य से युक्त वस्तु है, गुण पर्याय वाली वस्तु है, ये बात सत्य है, लेकिन अपने स्वरूप के अस्तित्व को छोड़े बिना, और जो भी गुण पर्याय वाले हैं वे हमारे भाई क्या है? लेकिन हमारी थाली में खाना नहीं खा सकते, क्यों हिंदू मुसलमान हमारे सब भाई, क्यों हरिजन भी हमारे भाई, क्योंकि वे भी भारतीय हैं और हम भी भारतीय हैं, तो खाओ एक साथ खाना। एक खाना तो हम अपने भाई के साथ भी नहीं खाते हैं ये तो उनके सामने है कि तुम्हारे भाई हैं तो खाना खाओ, हम तो एक थाली में खाना खाते ही नहीं, ये मार बार का रिवाज है कि भाई भाई हो एक थाली में खाना नहीं खाना तो कोई झगड़ा होगा, हमारे यहां तो बिल्कुल नहीं है, कोई किसी थाली में एक साथ बैठते ही नहीं, सवाल ही नहीं है? ये जगह तो पति पत्नी तो गुजरात के लोग देख लेकर मैं तो देखा, हमारे यहां तो पति पत्नी एक थाली में बैठे खाए हम कोई कल्पना भी नहीं आई, कल्पना में भी नहीं खाया होगा, वैसा खाना तो क्या, ये तो हमारे बाप दादों की हम तक की बात कह रहे हैं, आगे का मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन वस्तु की स्थिति ऐसी है। भाई भाई का तो सादृश अस्तित्व के हिसाब से है, तो स्वरूपास्तित्व को छोड़े बिना, स्वरूपास्तित्व की मर्यादा पक्की कायम रखकर, समझे ना, ये मेरी पत्नी है, दुनिया कोई भी पुरुष इसको उंगली का ऐसा छुए बिना अपनी बहन बनाए, मां बनाए, भाई बहन भाभी कहे, जो कुछ कहना है कहे, सब स्वीकार है, समझे ना, दादी कहे, मामी कहे, जो कुछ कहना है कहे, लेकिन ये बात याद रखना, उंगली लगाई तो उंगली तोड़ दी जाएगी, कहीं तो मेरी मामी है, मेरी दादी है, नहीं सब चलेगा, सब चले, तू सब कह, सब चल, लेकिन ये नहीं, ये नहीं, ये बात, ऐसा स्वरूप अस्तित्व में प्रवेश के बिना, सादृश अस्तित्व के आधार पर जितना भी एकता का कथन है हमें स्वीकार है।